الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا तो बुध के दिन पहले घंटे में हम तसहील बहश्ती देवर में से किताब सुलूक और एहसान पढ़ते हैं, और इसके अंदर जो मौजू चल रहा है आजकल वो है शेख कामिल के साथ ताल्लुक। तो ये एक सिलसिला हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बांधा, जिसमें सबसे पहले अखलाक़ ज़मीमा और उनका इलाज, इसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई, और उसके बाद फिर अखलाक़ हमीदा और उनके हुसूल करने के उनके हुसूल के तरीके, उनको हासिल करने के तरीके, और उन तरीकों के अंदर आखिर में जो है वो शेख कामिल के साथ ताल्लुक, क्योंकि शेख कामिल जो है वो अखलाक हमीदा को हासिल करना और अखलाक जमीमा को दूर करना उसका तरीका सिखलाता है और उसके लिए एक सबब बन जाता है। तो इसमें फिर हम बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं। आखिरी जो बिल्कुल उनवान है इसका जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा वो है मुरीद बल्कि हर मुसलमान की रोज़मर्रा के आदाब। तो इसमें आदाब लिखे हैं, और आदाब का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका, किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ये उस काम का अदब कहलाता है, या किसी के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, किसी के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए, उसका जो सबसे सही और सबसे अच्छा तरीका है उसको अदब कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के आदाब हैं कि भाई रोज़ जो इंसान को मामलात पेश आते हैं तो उनमें कैसे सबसे अच्छे तरीके से काम अंजाम देने चाहिए। तो इसमें हज़रत ने जो है वो 40 नुकात लिखे हैं, उनमें से हम 7 नुकात पिछली क्लास में जो कि ईद उल अज़हा से पहले हुई थी उसमें 7 नुकात हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद 8वां जो नुक्ता है वो आज पढ़ते हैं कि फरमाया कि ज्यादा ना हंसे ना ज्यादा बोले, बल्कि आदाब का एक क्विक जो है वो रिव्यू भी इंसान में कर लेना चाहिए क्योंकि जहन से निकल जाता है, सबके पास नोट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। तो हजरत ने जो आदाब लिखे थे उनमें सबसे पहला था जरूरत के बकदर दीन का इतना इल्म हासिल करे कि जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सके। ठीक है, यानी दीन को पढ़ना, शरीयत का इल्म हासिल करना, तो ये शरीयत का इल्म जो होता है ये वो फराइज और वाजिबात हैं जो कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें बतलाए हैं। फराइज और वाजिबात का इल्म, ठीक है, ये हासिल करना, और दूसरी चीज भी क्या जो साथ साथ जरूरी होती है हासिल करनी के मुहर्रमात का, जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी है चीज़ें तो उनका भी मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, मुहर्रमात और मकरूहात का इल्म हासिल कर, ठीक है, तो फराइज और वाजिबात का इल्म हासिल करना और मुहर्रमात और मकरूहात का इल्म हासिल करना ये शरीयत का इल्म हासिल करना कहलाता है। आजकल हमारे हजरत दीन ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी का बरकातुहुम कि जो जो खुतबात होते हैं ना, तो उनमें से एक हजरत के खलीफा साहब हैं तो वो निकाल क्या कहते हैं हजरत जी की नसीहतें, तो वो नसीहतों के पैराग्राफ्स निकाल निकाल करके वो शेयर करते हैं, फिर वो लोग जो है वो उनको आगे शेयर करते हैं। तो पिछले दिनों जो है जो नसीहतें बहुत ज्यादा शेयर हुई हैं और आप में से भी काफी लोगों ने उसको अपने स्टेटस के ऊपर भी लगाया और आगे भी फॉरवर्ड किया, वो थी औरत की तालीम के मुताबिक, कि औरत दीन का इल्म हासिल करे, औरत दीन का इल्म हासिल करे, ठीक है ना, जिस तरह से बाकी उलूम हासिल किए हैं उसी तरीके से दीन का भी इल्म हासिल करे, ठीक है। तो अब ये दीन का इल्म है क्या, क्या है ये दीन का इल्म, सही है। तो उसके ऊपर बहुत लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि जी वो आलिमा बन जाए, आलिमा कोर्स कर ले, आलिमा की सनद हासिल कर ले, ये है दीन का इल्म हासिल करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुरव्वजा आलिमा कोर्स है वहां पर ये मुराद नहीं है। जो मुरव्वजा यानी आजकल जो राइज मदारिस के अंदर आलिमा कोर्स है ना, वो इससे मुराद नहीं है। उसका कुछ हिस्सा मुराद यकीनन है, लेकिन वो पूरा का पूरा इससे मुराद नहीं है। बल्कि पूरा पूरा क्या मुराद है, फराइज और वाजिबात का इल्म हासिल करना और मुहर्रमात और मकरूहात का इल्म हासिल करना। आलिमा बन गई लेकिन फराइज और वाजिबात का इल्म नहीं हुआ और मकरूहात और मुहर्रमात का इल्म नहीं हुआ, तो ऐसा आलिमा कोर्स जो है ना ये दीन का वो इल्म नहीं कहलाएगा जो कि औरत को हासिल करने का हुक्म दिया जा रहा है या कहा जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वजह से आदाब का इल्म हासिल नहीं किया, आलिमा बन गई, आदाब नहीं आते, ना अल्लाह का अदब आता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब आता है, ना वालिदैन का अदब आता है, ना शौहर का अदब आता है, ना शौहर का अदब आता है। शौहर के साथ बदतमीजी वैसे के वैसे, राइट, शौहर के साथ वैसे के वैसी बदतमीजी करे चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने शरीयत का इल्म हासिल नहीं किया, इसने शरीयत का इल्म हासिल नहीं किया, ठीक है। तो वो तो जितना इल्म आता है उतना ज्यादा बदतमीजी पड़ जाती है, तो फिर ऐसे इल्म का जो है ना फिर कोई फायदा नहीं, और हरगिज हरगिज हमारे हजरत वो इल्म हासिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं। दूसरा, गुनाहों से बचे, ठीक है, यानी वही मुहर्रमात का इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन क्या उस इल्म पे अमल भी किया, क्या हराम से जो है वो बचने की भी कोई तदबीर करी, हराम से बची भी या नहीं। तो हराम से बचना, इसी को तो गुनाहों से बचना कहते हैं, ठीक है। तो फकत इल्म हासिल करने का फायदा नहीं होता, बल्कि इल्म के ऊपर अमल भी करना होता है, तो गुनाहों से बचे। तीसरी चीज थी, अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर, तो भाई गुनाह हो गया, कर लिया, अगर किसी भी तकाजे की वजह से किसी भी जो है वो मजबूरी में आकर के, अब क्या करे, अब क्या करे, यू नो व्हाट इज द एग्जिट आउट ऑफ इट, यहां से निकले कैसे इस गुनाह के दलदल में से, या इस गुनाह के बेबरकती और नहुसत के अंदर से अपने आप को निकाले कैसे, ये कैसे का जवाब क्या है, तौबा, ठीक है। तौबा करे तो तौबा क्या चीज होती है भाई, जुबान से बोले तौबा तौबा तौबा, जैसे वो इंडियन फिल्म का गाना भी होता है तौबा तौबा तौबा, है एक बचपन में सुना था इंडियन फिल्म का, अल्लाह माफ करे, ठीक है, तो वो गाना गाना शुरू कर दे तौबा तौबा तौबा, तो ये तौबा हो गई, नहीं, तौबा क्या होती है, तौबा कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस इल्म के साथ फिर तौबा करें, सही, अच्छा, यानी सही तरीके से तौबा करें, जैसे कि तौबा करने का मतलब है किसी का हक ना दबाए। इसके ऊपर क्या बताया था कि दीन है क्या, दीन जो है वो हुकूक का नाम है, दीन हुकूक का नाम है, ठीक है। तो जिसका भी जो हक है तो उसको अदा करें, जो अल्लाह ताला ने हक रखा है कि भाई फलाने का इतना हक है, फलाने का ये हक है, फलाने का वो हक है, तो दीन का इल्म हासिल करना मतलब हुकूक का इल्म हासिल करना, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर उसको अदा भी, यानी अमल भी करना उसके ऊपर, यानी हक को अदा भी करना, ठीक है। तो ये चौथा हो गया। फिर पांचवा था, माल की मोहब्बत और शोहरत की ख्वाहिश ना रखे, और तकल्लुफ खाने और लिबास की फिक्र में ना रहे, ठीक है, कि अब जो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं ना, तो इस दीन के इल्म के हासिल करने में रुकावट क्या बनती है, फजूलियात के शौक, ठीक है, फजूलियात और खराफात, यानी फजूलियात और खराफात क्या चीजें होती हैं, जो कि इंसान के फायदे की नहीं होती, फायदे की बातें नहीं होती। तो अब अगर ये बेफायदा चीजों के अंदर लगी रहेगी, ठीक है, तो फिर फायदा मंद चीज का इल्म नहीं हासिल कर सकेगी, ठीक है। तो इन चीजों की ख्वाहिश ना रखे, ठीक है, या अगर है तो फिर उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, कंट्रोल में रखे, ठीक है। अब ये नहीं कहा जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें जो है वो लिबास के बारे में सोचना छोड़ दें, फिर तो भाई औरत मर्द बन जाएगी, तो फिर मर्द और औरत में फर्क क्या रहेगा, नहीं, मर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये ना कि बस उन्हीं की फिक्र में लगे हुए हैं, कभी इधर दौड़ लग रही है, कभी उधर दौड़ लग रही है, कभी यहाँ पे दर्जी के पास भागी चली जा रही है, कभी वहां पे दर्जी के पास भागी चली जा रही है, कभी इधर मार्केट में भाग रही है, कभी उधर मार्केट में भाग रही है, ठीक है। तो फिर इल्म का टाइम किधर कहाँ से आएगा, ठीक है। इल्म कैसे हासिल करेगी ये फराइज और वाजिबात का और मुहर्रमात और मकरूहात का, कैसे इल्म हासिल करेगी। और इसी तरीके से अमल के रास्ते में भी ये चीजें रुकावट बन जाती है, पता। अच्छा, आलमा जो भी आलमा कोर्स, तो खैर हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इल्म हासिल कर लिया, अब इल्म हासिल करने के बाद इनके ऊपर अमल करने के लिए भी तो वक्त चाहिए होता है ना भाई, ठीक है। बेवक्त क्यों, यानी बगैर वक्त के तो आप अमल नहीं कर सकते। तो आप सारा वक्त जो है वो अगर मार्केटों की जीनत बना हुआ है, मार्केटों की नजर हो गया है, तो फिर जो है वो अमल कैसे करेंगे। छठा था, अगर गलती पर कोई टोके तो अपनी गलती तस्लीम करके फौरन इकरार और तौबा करें, यानी जो तकब्बुर का रूहानी मर्ज अगर इसके अंदर है, और अगर का जवाब तो जाहिर यही होता है कि मेरे अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो इस अगर का जवाब जो है ना, खुद नहीं दिया जा सकता कि आपके अंदर रूहानी मर्ज है कि नहीं। तो फिर रूहानी मर्ज तो फिर डॉक्टर बताते हैं ना, तो तकब्बुर का रूहानी मर्ज उसका इलाज करें, क्योंकि आगे से अगर किसी ने आपको आपकी खैर ख्वाही की, आपको बता दिया कि भाई आपकी फलानी चीज गलत है, आप फलानी चीज की इसलाह कर लें, तो एकदम से भड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं उसके ऊपर, है ना, और गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बल्कि अगले बंदे को जो है वो सुनाना शुरू करते थे, ठीक है। तो अगर ऐसा मिजाज बना हुआ है तो फिर इसलाह नहीं हो सकती, गलती ठीक नहीं हो सकती। तो हजरत फरमाया कि गलती को तस्लीम करे, इसका मतलब क्या है, तकब्बुर का इलाज करेगी तभी गलती को तस्लीम कर सकेगी। अगर तकब्बुर का इलाज नहीं किया है तो फिर अपनी गलती तस्लीम हरगिज नहीं करेगी, बल्कि हर बात में जो है ना, वो पलट करके अगले बंदे के ऊपर ही मारेगी। किसी को इसलाह करेगा ना, तो पलट करके उसी के ऊपर, तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हो, तुमने तो ये गलत किया, तुमने तो वो गलत किया, ठीक है। तो ये तकब्बुर का मर्ज होता है कि जिसकी वजह से जो है ना, वो इस्लाह इंसान की रुक जाती है। फिर उसके बाद सातवां था, सख्त जरूरत के बगैर सफर ना करें, ठीक है। यानी टिक करके घर में बैठे, टिक करके बैठने की आदत बनाए, ये जो आदत बन जाती है ना, और अनफॉर्चुनेटली बड़े बना देते हैं, घर के बड़े जो है ना, वो अपनी बेटियों की, क्योंकि अभी एक औरतों की क्लास भी है, और हजरत ने बहसी देवर लिखी भी औरतों के लिए ही थी, तो इस वजह से औरतों को जरा मुखातब करके बात की जा रही है कि बड़े जो है ना, वो बच्चियों की आदत बना देते हैं कि उनसे घर में टिका नहीं जाता, ठीक है ना, घर में टिका नहीं जाता, बेचैनी होती है घर के अंदर, बोरियत होती है घर के अंदर, और घर के अंदर कुछ करने का पता ही नहीं होता क्या करना है, ठीक है ना, घर के अंदर की कोई मसरूफियात नहीं होती, घर के अंदर की कोई मशगूलियात नहीं होती, घर के अंदर जो है वो कोई उन्होंने ना काम करना, ना जो है वो कोई सफाई सुथराई करनी, ना जो है वो और कोई वो कुछ नहीं करना घर में। तो इस वजह से जो है ना, वो हर वक्त बाहर की फिक्र में, हर वक्त बाहर की फिक्र में, ठीक है। तो अब ये बाहर निकलना जो है ना, ये छोटे सफर की शक्ल में भी होता है कि भाई कभी इधर बाजार, कभी उधर मार्केट, कभी उधर कॉफी शॉप, कभी उधर जो है ना वो रेस्टोरेंट, राइट, हर वक्त जो है वो घर से बाहर, हर वक्त घर से बाहर, और ये फिर बड़े सफर की नजर की शक्ल में भी होता है, ठीक है, कि जी अब मैं जाऊंगा वो उधर से उस शहर चली जाऊं, फिर मैं उस शहर चली जाऊं, फिर मैं उस गांव चली जाऊं, फिर मैं जो गांव वालियां होती हैं वो गांव की, और शहर वालियां जो है वो शहर की, ठीक है। तो ये जो बाहर के सफर करने का है ना, करना फी बुयूत कुन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म क्या है, औरतों को, मर्दों को नहीं, औरतों को, करना फी बुयूत कुन्ना, कुन्ना का जो सीगा है ये मर्द के लिए नहीं है, ये औरत के लिए है। करार पकड़ो अपने घरों के अंदर, अपने घरों के अंदर करार पकड़ो, ठीक है। तो अब जो है वो ये मुसीबत बनी हुई होती है कि नहीं, घर में बैठना तो आता ही नहीं है, घर में कुछ करने का काम ही नहीं है, आइडिया ही कुछ नहीं है ना, कहते हैं ना ये बार बार, औरत की तालीम, औरत की तालीम, औरत तालीम हासिल करे, औरत को तालीम से मत रोको। अल्लाह के बंदे कोई ये सवाल नहीं करता कि कौन सी तालीम, किस चीज की तालीम, किस चीज का इल्म, घर में क्या करना था, इसकी तालीम की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी औरत को, उज्व मुअत्तल बना करके पूरे की पूरी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को बना के रखा हुआ है। उज्व मुअत्तल यानी उज्व मुअत्तल किसको कहते हैं कि जिस्म का कोई ऐसा पार्ट कि जिसका कोई काम नहीं है, मुअत्तल बैठा हुआ है, फारग बैठा हुआ है। तो भाई उसी तरीके से एक एक मुल्क होता है, उसकी पॉपुलेशन गोया कि उस मुल्क का आधा जिस्म वो क्या होता है, औरतों पे मुश्तमिल होता है ना। औरतों की पॉपुलेशन 50% से वुमन ज्यादा ही शायद होती है, ठीक है। अब उनके पास काम कोई नहीं, ठीक है, क्या कर रही है नहीं पता। तो भाई इल्म दो ना उनको कि तुमने क्या करना है। तुम्हें अल्लाह ताला ने घर दिया है, तुम्हें घर वाली बनाया है, तो घर में क्या करना था इसका इल्म वो हासिल नहीं करेगी तो फिर जाहिर सी बात है वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या करना है। तो अब शैतान आकर के कहता है बाहर का इल्म हासिल करो और बाहर निकलो और बाहर जा करके काम करो, ठीक है। घर के अंदर इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, घर के काम के लिए जाहिल रहो और जो दिमाग में आए, जो तुमने जो है वो किसी को करते देख लिया, बस वही है घर का काम, बस उतना ही है। जहालत के साथ घर का काम करना है, जहालत के साथ जो है वो रिश्तेदारियां निभानी है, राइट। जहालत के साथ जो है वो शौहर के साथ रहना, जहालत के साथ जो है वो बच्चों के साथ रहना, वहां पे इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, बगैर इल्म के सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा पूरे मुआशरे का ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर जब बगैर इल्म के आप वो काम करेंगे जिसका आपने इल्म हासिल नहीं किया, तो फिर आप उस काम को अच्छा कर सकते हैं या उस काम को खराब करेंगे, उस काम को बिगाड़ेंगे, राइट। बाहर जाके दफ्तर में कोई काम है बगैर इल्म हासिल किए वो काम करना शुरू कर दें तो क्या करेंगे फिर उसके बाद, उस दफ्तर का काम खराब होगा कि काम अच्छा होगा। जाहिलों को रखने कोई दफ्तर में नौकरी नौकरी पर, राइट। स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाने के टीचर्स रख लें, जाहिल जाहिल टीचर्स रख लें स्कूल के अंदर, तो वो स्कूल के अंदर जो है वो क्या करेंगे, बच्चों को जो है वो तालीम दे सकेंगे, खुद टीचर जो है वो जाहिल है। तो भाई पहले जो चीज पढ़ानी है उसका इल्म हासिल करेगी तब जा करके पढ़ाएगी ना, तो उसके लिए जो है वो इल्म की जरूरत है। कंप्यूटर को चलाने के लिए इल्म की जरूरत है, राइट। वो बगैर इल्म के कंप्यूटर को नहीं चला सकती, उसके लिए पहले बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करो, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करो, राइट, सर्टिफिकेशंस करो और डिप्लोमे करो, फिर जाके कंप्यूटर पे काम कर सकोगे। और तुम्हारे घर के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी अशरफुल मखलूकात रखी हुई है तुम्हारे घर के अंदर, जो तुम्हारी औलाद है, राइट, जो तुम्हारा शौहर है, जो तुम्हारे दूसरे घर के साथ रह के अंदर रहने वाले अफराद हैं, अशरफुल मखलूकात, क्या कंप्यूटर अशरफुल मखलूकात है, राइट। क्या जो मशीन्स हैं किसी फैक्ट्री के अंदर वो अशरफुल मखलूकात हैं। तो जो सबसे कम दर्जे की मखलूकात हैं उनके यहाँ तो इतना लिहाज, इतनी तमीज कि जी बगैर इल्म हासिल करने के हम आपको हाथ नहीं लगाने देंगे, इनको हम हाथ नहीं लगाने देंगे, बिकॉज दे आर सेंसिटिव, राइट, दे आर प्रेशियस। तो जाहिल को तो हम कंप्यूटर के करीब नहीं जाने देंगे, जाहिल को तो हम मशीनरी के करीब नहीं जाने देंगे। और जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया था वो प्रेशियस नहीं है, वो कीमती नहीं है कि उसको तो जाहिल औरत जाकर के हाथ लगाती है और सारा का सारा उसकी जो है वो जिंदगी का मामला करती है, बिल्कुल जाहिल गट और गंवार औरत जिसको कि अलिफ बे भी नहीं पता कि औलाद के साथ क्या करना है सवाई डायपर चेंज करने के, वो डायपर भी जो है वो पता नहीं ऐसे ही कर 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 आके वो सीख दी है कि डायपर कैसे चेंज करना है, बस डायपर चेंज करना ही है ना। अशरफुल मखलूकात की अशरफुल मखलूकात के हुकूक क्या है, डायपर चेंज करना बस। तो जी डायपर चेंज करना सीख लिया, सही समझ में आ रहा है, एतराज है तो बताएं। कुछ लोग हैं ना वो सुनते हैं क्लास और फिर उसके बाद मैसेज आता है ग्रुप के ऊपर, लेफ्ट दीन एसेंशियल्स फॉर वेमेन है ना, वो फिर क्लास खत्म होने के बाद जो है ना वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह के हवाले जाओ, अल्लाह के हवाले है ना। अगर आप, अगर इस वजह से आपने छोड़ा है, हमें नहीं पता आपने किस वजह से छोड़ा है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब क्लास के अंदर इस किस्म की कोई चुभती हुई बातें की जाती है ना, तो फिर वो छोड़ देते हैं क्लास को, अल्लाह के हवाले, आप चाहें, हमें कोई जरूरत नहीं है भीड़ लगाने की, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई शौक नहीं है भीड़ लगाने का, ठीक है। तीन भी होती थी ना खवातीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त भी क्लास करते थे, ये होती, अभी तो 66 खवातीन मौजूद है ना, जब तीन होती थी ना आप एडमिन साहिबा से पूछ लें, बल्कि तीन से कम भी होती थी फिर भी क्लास हो जाती, जीरो पे तो क्लास नहीं हो सकती, लेकिन दो तालिबात हैं बस क्लास हो जाती, ठीक है। हम नंबर्स नहीं देख रहे होते कि कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, अगर एतराज है सीखना चाहती हैं पूछें, ठीक है, इश्काल है पूछें, ठीक है, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं करनी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें ये भी बात हुई थी कि जी अम्मी के घर के भी हर वक्त चक्कर लगते रहते हैं, हर वक्त अम्मी का घर, हर वक्त अम्मी का घर, तो ये भी तो एक सफर होता है ना, अम्मी के घर के जो सफर होते हैं, तो जो अम्मी के घर के हर रोज सफर करती रहती है ना, तो वो अपना घर कब बनाएगी, अपने घर के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाती फिर, ठीक है। अपना घर बनाना, अपना घर चलाना, ये औरत का असल प्रोजेक्ट है, और ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये असल प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए तो उसको कितनी यकसुई की और कितनी जो है ना वो समझ हासिल करने की और कितना जो है वो अपना यानी तवज्जो लगाने की जरूरत है। और जो हर वक्त अम्मी के घर या बहनों के घर या फलाने के घर या फलाने, या फिर जा नहीं सकती, शौहर साहब ने जो है वो डंडा रखा हुआ, नहीं अम्मी के घर नहीं जाना, तो फोन के ऊपर हर वक्त अम्मी के घर, हर वक्त फोन पे अम्मी के साथ या बहनों के साथ या सहेलियों के साथ, ठीक है। तो अब ऐसी जो औरत होती है ना, उसके घर का फिर मुहावरतन कहते हैं अल्लाह हाफिज, हालांकि हाफिज तो हर घर का अल्लाह ही होता है, लेकिन मुहावरतन क्या मतलब होता है, अल्लाह ही हाफिज ये बस, ठीक है। तो सख्त जरूरत के बगैर सफर ना करे, सफर में बहुत सी बातें बे एहतियाती की होती हैं, बहुत से नेक काम छूट जाते हैं, और घर बनाना औरत के लिए राइट, अल्लाह के हुकूक के बाद घर के हुकूक, ठीक है, तो ये तो असल काम है उसका, तो फिर ये नेकी काम छूट जाएगा उसका, वजीफों में खलल पड़ जाता है, यानी जो डेली रूटीन्स होती हैं, वजीफे का मतलब ये नहीं होता तस्बीह झेपना, ठीक है, वजीफे का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मुसल्ले पे बैठ करके जो है ना वो पढ़ रही हैं और मंजिल पढ़ रही हैं, नहीं, वजीफे का मतलब डेली रूटीन, ये है असल मतलब वजीफे का, डेली रूटीन, ठीक है। और जाहिर है एक ईमान वाले की डेली रूटीन के अंदर तस्बीहात भी होती हैं, नफलें भी होती हैं, और दीगर इसका तिलावतें भी होती हैं, जिक्र मुराकबा भी होता है, लेकिन सिर्फ ये वजीफा नहीं होता उसका, ठीक है, वजीफा उसका सिर्फ ये नहीं होता मुसल्ले पे बैठ करके, बल्कि डेली रूटीन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब जो है वो सफर जो है ना, उससे ये डेली रूटीन आपको पता है नहीं कर सकते, अभी जो सफर पे होता है वो ये काम नहीं कर सकता, तो जरूरतन सफर जरूर करे, ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं औरत जो है वो घर में रहे और बाहर बिल्कुल ना जाए, नहीं, लेकिन बिला जरूरत, और जरूरत की तारीफ जो है फिर इल्म के साथ की जाती है, जहालत के साथ ये डिफाइन नहीं किया जाता कि मेरी क्या जरूरत है और मेरी क्या जरूरत नहीं। अब उसके बाद जो है ना आगे की चंद चीजें पढ़ लेते हैं कि ज्यादा ना हंसे ना ज्यादा बोले, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हंसने और ज्यादा बोलने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, यानी रूह मुर्दा हो जाती है, तो एक बुरी आदत है, और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी जो है ना वो कहकहा मार कर हंसने की नहीं थी बल्कि मुस्कुराने की थी, इससे जो है वो इंसान की इज्जत भी खराब हो जाती है, ठीक है, देखने वाला जो उसको देखता है कि जी हर वक्त ये हंसे चला जा रहा है, हंसे हंसे चले जा रहा है, तो फिर दिल से जो है वो देखने वाले की इज्जत खत्म हो जाती है। और ज्यादा बोलना, तो बोलने का मतलब तो यही होता है कि भाई आपकी जुबान पे कोई ना कोई चीज, अब हर वक्त दिल के अंदर अच्छी चीजें नहीं हो रही होती इंसान के, हर वक्त ख्यालात जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे नहीं होते कि जब बोलेंगे तो उन ख्यालात का इजहार होगा, देखिए बोलना जो है ना ये असल चीज नहीं है, बोलना तो सिर्फ इजहार होता है, जो इंसान के जहन में चल रहा होता है उसका इजहार होता है वो, ठीक है। तो अब अगर अच्छी चीज जहन के अंदर नहीं चल रही है और जुबान से बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो फिर जुबान से फिर बुरी ही चीजें निकलेंगी उसके, और जुबान से निकलने वाली चीज जो होती है फिर वो कैच कर ली जाती है, वो फरिश्ते भी कैच कर लेते हैं। वो मा यलफ़ज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, कोई चीज जुबान से नहीं फिकती। लफ़ज़ा यलफ़ज़ु का मतलब होता है फेंकना, मुंह से कोई चीज फेंकना। जैसे आप खजूर खाएं ना, तो खजूर खाने के बाद एक तो तरीका शरीफों वाला तरीका होता है कि आप अपने हाथ के अंदर उसकी गुठली निकालें और डस्टबिन में डाल दें, और एक और भी तरीका होता है कि आप जुबा आप मुंह से फेंकें उसको डस्टबिन में, जो है ना वो मुंह से जो है वो थूक दें, या एक तरीके से आप फेंक दें उसको जो डायरेक्ट मुंह से। उसके लिए अरबी जुबान के अंदर लफ़ज़ा यलफ़ज़ु का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्फाज भी जो है ना वो जब मुंह से निकलते हैं तो वो भी लफ्ज क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो मुंह से फिक रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। तो वमा यलफ़ज़ु मिन कौलिन, कहीं भी बात में से कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि जिसको के करीब रहने वाले जो अतीत होते हैं ना, जो जो निगेबान होते हैं साथ रहने वाले फरिश्ते, वो उसको पिक ना कर ले। ठीक है, हर चीज हमारी नोट हो रही है। तो इस वजह से जुबान को बंद रखना, मुंह को कम इस्तेमाल करना, ये हमारे अपने फायदे की चीज है। फिर उसके बाद ये कि फरिश्तों के अलावा इंसान भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ रहने वाले होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो उनके कान भी पिक कर लेते हैं। सिर्फ फरिश्तों के कान पिक नहीं कर रहे होते, बल्कि इंसानों के कान भी पिक कर रहे होते हैं जो भी बात कह रहे हैं। तो एहतियात बोलने के अंदर ये बड़ी अहम चीज है, खुसूसन जो घर वालियां हैं तो वो अपने शोहर के साथ इस जुबान की एहतियात बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि शोहर के साथ ताल्लुकात जो है ना वो जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से बड़ी तेजी से खराब होते हैं। उसी तरह सास के साथ ताल्लुकात जो है वो जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से खराब हो जाते हैं, ठीक है, और भी दूसरे जो लोग साथ रहते हैं उनके साथ भी जुबान का एहतियात, बच्चों के साथ जुबान का एहतियात, कि भी बच्चों को जो है वो यानी एब्यूज ना करे, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे, उनको जो है वो बात बात के ऊपर जो है वो ताने ना दे, उनको बात बात के ऊपर कुछ अजीब जो तो आदतें होती हैं, तंज करना, ठीक है, तो वो तंज की आदत जो होती है ना, फिर वो आदत तो आदत होती है भाई, वो फिर हर जगह निकलती है, हर जगह चलती है वो आदत, तो इवन अपने बच्चों के ऊपर जो है वो तंज, ठीक है, तो इससे जो है ना वो अगले बंदे के ऊपर, स्पेशली अगर उम्र का कम हो तो उसके ऊपर एक मनफी असर पड़ता है, तो ज्यादा ना बोले। किसी से झगड़ा तकरार ना करें, ये भी खैर बोलने के अंदर ही आ जाता है, लेकिन मतलब लड़ाई खामखा जो है ना वो लोगों के साथ लड़ाई मत मोल लिया करें, झगड़ा तकरार ना किया करें। तकरार का मतलब यही होता है जुबान से जो है वो बार बार चीज अदा करना, बार बार चीज अदा करना, तकरार का मतलब रिपीटेशन, बार बार एक बात को दोहराना। एक आम औरत जरूरियात दीन और जरूरियात जिंदगी का इल्म कैसे हासिल करे कि रब और घर का हक अदा कर सके, आलिमा बने बगैर या मदरसे जाए बगैर, ये सवाल भी पूछा जाता है। एक आम औरत जरूरियात दीन और जरूरियात जिंदगी का इल्म कैसे हासिल करे कि रब और घर का हक अदा कर सके, आलिमा बने बगैर या मदरसे जाए बगैर, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो सवाल होता है, पूछा जाता है, इसका जवाब क्या है कि आलिमा की डेफिनेशन करें ना, आलिमा की तारीफ क्या है, आलिमा की तारीफ क्या है, ठीक है, तो मजहूल तरीके से काम करते रहना, मजहूल अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशंस की बुनियाद पर मजहूल तरीके से, यानी नथिंग इज क्लियर, ठीक है, हमारा दीन क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। मतलब क्या है इसका, इन्नमल अफआलु बिन्नियात क्यों नहीं कहा, क्योंकि अफआल वो काम होते हैं जो कि इंसान बगैर नियत के करता है, उसको पता नहीं होता है वो ये काम क्यों कर रहा है, रूटीन में कर रहा होता है। आमाल कब बनते हैं, जब नियत होती है, नियत का मतलब क्या है, उसको पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, आलिमा क्या है ये? आलिमा क्यों? व्हाट इज आलिमा? मदरसे के अंदर जाकर के जो आप ये वाला इल्म हासिल कर रहे होते हैं, तो क्यों कर रहे हैं आप ये इल्म हासिल? उसूल फिका, उसूल हदीस, और ठीक है, क्यों कर रहे हैं आप ये इल्म हासिल? वजह क्या है इस इल्म हासिल को करने की? ठीक है, मजहूल तरीके से ना कर रहे हैं, सब कर रहे थे, इस वजह से मैं भी कर रही थी, वजह क्या है? लेट्स डिफाइन व्हाट आलिमा मीन्स। ठीक है, तो अब तो इतना तो इल्म होना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं कि इस्तेलाही तारीफ क्या होती है किसी चीज की और लफ्जी तारीफ क्या होती है। आलिमा की लफ्जी तारीफ क्या है? इल्म वाली। आलिमा की लफ्जी तारीफ होती है इल्म वाली। ठीक है, तो क्या आलिमा की इस्तेलाही तारीफ भी ये है कि इल्म वाली? ये इस्तेलाही तारीफ है उसकी। क्या होती है इस्तेलाही तारीफ? भाई ऐसी मजहूल तरीके से, ठीक, मजहूल तरीके से तो इल्म हासिल करने से मकासद तो हासिल नहीं होता ना, जो कि जिंदगी का मकसद था वो तो हासिल नहीं होता, बस करे चले जा रहे हैं मजबूर। तो कैसे का फिर जवाब है ना, लेकिन आप तो रहने ही दें, आपके तो दूसरे मसले चल रहे हैं, तो इस वजह से आपसे फिर बात, अल्लाह ताला मौका देगा तो फिर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उन्हें समझा सकते हैं कि वो देखो कितने अच्छे हैं, क्योंकि इस तरह कंपेयर करके बोलते तो बच्चे भी बोलते कि उनके अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बच्चा खैर, तो इन बच्चों को बड़ा जबरदस्त जवाब देते हैं, उनके अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं, इसी तरह क्या करना चाहिए हजरत, आप बता दें। माशाल्लाह, कहते हैं ना कि आज के बच्चे भी बड़े तेज हैं, वो हर हर जमाने के बच्चे आज के बच्चे होते हैं जाहिर है, तो हर जमाने के लोग जो है ना वो यही कहते हैं, आज के बच्चे देखो कितने तेज हो गए। सही है, तो खैर आज के बच्चे, तो बच्चे जो ये जवाब देते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब देते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्मा अब्बा को ये उनको कहना ही नहीं चाहिए, उनको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब अम्मा अब्बा जो है ना, वो सारी मुसीबत क्या है कि अम्मा अब्बा करते हैं खुद गलत काम, अम्मा अब्बा करते हैं खुद गलत काम और इल्जाम थोपते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनको भी आदत लगी हुई होती है दूसरों पर इल्जाम थोपना, अपना काम करना नहीं, दूसरे पर इल्जाम थोपना। ठीक है, तो अब ये आदत जो है ना, ये माँ बाप बनने के बाद भी खत्म नहीं होती। आदत तो आदत होती है, कयामत के दिन भी खत्म नहीं होगी, तो जिंदगी में कहां से खत्म होगी? रोजे महशर में अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए खड़े हुए होंगे, वहां पर भी वही आदतें जो दुनिया की आदतें बनी हुई थी, इल्जाम तराशी की आदत, वो वहां पे भी खत्म नहीं होगी। अपना कसूर ना मानने की आदत, वो वहां पर भी खत्म नहीं होगी। तस्वुर करें, क्या शादी होने के बाद वो आदत खत्म हो जाएगी? भाई आदत तो खत्म करने से खत्म होती है, उसके ऊपर तो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, किताबें पढ़ने से आदतें खत्म नहीं होती। ठीक है, आदत तो ये एक पूरा एक अलग एरिया है। तो अब जो है ना, वो आदत होती है दूसरे पे इल्जाम लगाने की, दूसरे का कसूर, तो अब जो है वो जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चा ये खराब, दूसरा बच्चा अच्छा, ये बच्चा तुम खराब हो, दूसरा बच्चा अच्छा। ठीक है, तो असल में तो गलती अपनी होती है ना। ठीक है भाई, आप बजाय इसके कि बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करें, अपने आप को खुद ही दूसरे वालदेन से कंपेयर करें। ठीक है, कि दूसरे वालदेन अगर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो आप क्यों नहीं करें अच्छी तरबियत? ठीक है, तो इल्म, ये वाला इल्म हासिल करें, गौर से बात को सुना करें। ठीक है ना, गौर से, कितना भेज दिया अब तो भाई, अब वो भी अगर आपने नहीं पढ़ा हो कुरान अजीम शान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, जो कि ईमान वालों से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालों। तो पिछले दिनों जो इसारिज ने आयात शेयर करी थी तर्जुमे और तफसीर के साथ और कुछ अपनी गुजारिशात के साथ, उसको गौर से पढ़ा आपने, समझा उसको? तो बात हमारे जो मशायख समझा रहे हैं, तो उसको समझें, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों ये का बात अभी पिछली क्लास के अंदर भी हुई कि हर बच्चा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है, हर इंसान, बच्चा भी तो इंसान होता है कि नहीं होता, हर इंसान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है। तो हम जो है ना वो कंपेयर जो कर रहे होते हैं ना, तो हम ये अल्लाह ताला की जो तख्लीक है ना उससे उसके ऊपर एतराज कर रहे होते हैं कि क्यों मुख्तलिफ बनाया। भाई कंपेयर तो आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे होते हैं, जो एक जैसी चीजें होती हैं उनको आप उसमें कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है तो फिर आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं बच्चों को एक दूसरे के साथ? ठीक है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और जो करता है ना तो उसको किसी तरीके से या तो उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई आप नहीं कंपेयर करें बच्चों को दूसरे बच्चों से, और अगर नहीं वो बात सुन रहे हैं तो फिर अपने बच्चों को उनसे बचाएं, दूर रखें अपने बच्चों को उनसे। ठीक है, किसी से झगड़ा तकरार ना करें। पॉइंट नंबर 10, शरीयत के अहकाम का हर वक्त ख्याल रखें। ठीक है, हर वक्त ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि हाथ काम काज में मसरूफ लेकिन दिल अल्लाह की याद में मसरूफ। ठीक है, दिल अल्लाह की याद में मसरूफ का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, वकूफ कल्बी भी सुनते रहते हैं ना, जो बयान सुनते हैं, मामूलात सुनते हैं कि भाई मामूलात हैं, वकूफ कल्बी उनमें से एक मामूल है। तो वकूफ कल्बी मामूल क्या है? शरीयत के अहकाम का हर वक्त ख्याल रखे, ये है वकूफ कल्बी, अपने दिल को इसके ऊपर जमा के रखे। ठीक है, कि जो काम कर रहा हूँ, जो सोच सोच रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ, वो शरीयत के अहकाम के मुताबिक जायज है, नाजायज है, फर्ज है, हराम है, वाजिब है, मकरूह है। अपनी जुबान से बात निकालने के वक्त भी ख्याल रखे, अपने हाथ पैर से काम करते वक्त भी ख्याल रखे, हत्ता के अपने जहन में सोच लाते हुए भी ख्याल रखे कि मेरी ये सोच जो है वो शरीयत के अहकाम के मुताबिक है कि। और हम सोच को जितना कम अहमियत देते हैं ना, मामला बिल्कुल बरअक्स है, मामला बिल्कुल बरअक्स है। असल चीज है ही सोच, और सबसे अहम चीज है ही सोच, और हमारे नजदीक सोच की कोई, हमारे नजदीक अगर अहमियत है भी ना अपने अफाल की, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो करने वाले अफाल की, थोड़ी सी और अहमियत किसी के दिल में आ जाए तो बोलने वाली बात की है, लेकिन सोच हमारी गंदी हो, सोच हमारी गलत हो, इसकी अहमियत नहीं है। ठीक है, तो असल चीज सोच है। तो इन तीनों चीजों के अंदर सोच, देन कॉल, और उसके बाद फिर फेल। ठीक है, ये तरतीब इस तरह से बनती। तो शरीयत के अहकाम का हर वक्त ख्याल रखें। 11वीं चीज, इबादत में सुस्ती न करें। तो इबादत का मतलब असल में तो सिर्फ अहकाम मानना होता है, फराइज और वाजिबात और गुनाहों से बचना, ये असल इबादत होती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इबादत जो है ना वो सारी नफलों को इबादत समझ लिया गया है, और फराइज को जो है ना इबादत की तारीफ से खारिज कर दिया गया है। हालांकि मामला बिल्कुल बरअक्स है, असल में इबादत तो फराइज होती है। ठीक है, नवाफिल तो फराइज के मुकम्मल होने के बाद शुरू होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जब इबादत का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना तो तहज्जुद से बात शुरू होती है। बात कहाँ से शुरू होती है? तहज्जुद से। भाई तहज्जुद फर्ज नहीं है, तहज्जुद नफिल, भाई फराइज की बात करें ना, फराइज की। ठीक है, तो इबादत में सुस्ती ना करें, फराइज के अंदर सुस्ती ना करें। सुस्ती का मतलब भी क्या होता है कि भाई मिस हो गया तो मिस हो गया, फिक्र नहीं है, तवज्जो नहीं है, गम नहीं है, और वक्त का भी ख्याल नहीं है, वक्त जो था उस वक्त को छोड़ करके किसी और वक्त के अंदर फर्ज अदा कर रहे हैं। ठीक है, खिदमत, तो खिदमत वैसे इबादत के बाद एक अलग चीज समझी जाती है, खिदमत। ठीक, यानी इबादत का ताल्लुक जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक के साथ, और खिदमत का ताल्लुक जो है वो अपने साथ रहने वाले इंसानों के ताल्लुक के साथ। ठीक है, उसको खिदमत कहते हैं। लेकिन हमारे दीन ने तो इबादत को भी खुद डिफाइन किया है और खिदमत को भी खुद डिफाइन किया है, हमारे दीन ने डिफाइन किया है ना। ठीक है। तो इस वजह से अगर खिदमत के मामला जो है ना, वो भी हमारे दीन की तरफ से अगर डिफाइंड है कि भाई हाँ ये फलाने शख्स के साथ आपकी जिम्मेदारी है, फलाने शख्स के साथ आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर उस जिम्मेदारी को अदा करना वो भी इबादत के अंदर शामिल। ज्यादा वक्त तन्हाई में रहे, ये तो मुश्किल काम है आजकल। सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है ना वो यही है, ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारना। ठीक है, क्योंकि फिजिकल तन्हाई तो किसी की मजबूरन हो ही जाती है, अगर वो अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं और करीब जो है वो जान पहचान वाले लोग नहीं होते हैं, तो फिजिकली तो तन्हाई जो है ना वो आज बल्कि ज्यादा है, फिजिकल तन्हाई। ठीक है, लेकिन इंटरनेट के जरिए से, गैजेट्स के जरिए से, फोन के जरिए से, हत्ता कि टीवी के जरिए से, जो वर्चुअल तन्हाई है ना, यानी इंसान तन्हा नहीं रहता, चाहे कहीं भी रहता। ठीक है, इंटरनेट जो है वो दुनिया के गोशे गोशे के अंदर मौजूद है, बल्कि इन जालिमों ने जितना यानी पसमानदा इलाका था ना, वहां पे ज्यादा अच्छा इंटरनेट पहुंचाया। जितना पसमानदा इलाका वहां पे ज्यादा अच्छा इंटरनेट। ठीक है, तो अब जो है ना वो गांव के रहने वाले भी इंटरनेट से उसी तरह से कनेक्टेड, इस तरीके से जो है ना वो गुंजान आबाद शहर के रहे। ठीक है, बाकी कोई चीज पहुंची ना पहुंची, इंटरनेट जरूर पहुंची। और इंटरनेट भी कैसे पहुंचाया कि इंटरनेट के जो वो तारें बिछी होती है ना, केबल्स जो बिछे होते हैं, तो उन तारों के जो अंदर करंट चलाने वाली डिवाइसेस होती है ना, रिपीटर्स जिनको कहते हैं, तो वो डिवाइसेस जो है ना वो कभी भी बंद ना हो। इन बदबख्तों ने जब इंटरनेट का जाल बिछाया है ना, स्पेशली हमें तो अपने मुल्क का पता है ना, हमारे सामने ये जो बिछा था ना ये जाल, तो इन्होंने जहां जहां पे रिपीटर्स लगाए हैं ना, जहां वो डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के तार के अंदर करंट को दौड़ाती हैं ताकि इंटरनेट के सिग्नल्स चलते रहें, उन रिपीटर्स के साथ इन्होंने यूपीएस लगाए हैं, उसके साथ जनरेटर्स लगाए हैं, ताकि ऊपर जमीन के ऊपर जो इंसान बसते हैं ना, उनके घरों के अंदर जब अंधेरा हो जाए तो भी इंटरनेट कनेक्शन बंद ना हो। यूपीएस लगे हुए हैं, वो डिवाइसेस कभी भी बंद नहीं। ठीक है, क्यों भाई, कितने खैरख्वाह हैं ये हमारे कि हमारा इंटरनेट कभी बंद ना हो, है ना। इन्होंने इसलिए ये काम किया है ना ताकि खुदा ना खासा कल कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इंटरनेट के जरिए से जो है वो एम्बुलेंस को कॉल कर सकें। ये खैरख्वाही थी उनकी कि वो इंटरनेट बंद ना हो हमारा, है ना। कितने अच्छे लोग हैं ये, या जो है वो दुनिया के कोने कोने में हम अपने रिश्तेदारों से रबते में रहे हर वक्त, और ये तो बड़ी अच्छी चीज होती है रिश्तेदारों से रबता करना, इस वजह से उन्होंने इंटरनेट ऐसा बनाया है कभी भी बंद ना हो। ये हमारी भूल है, हमारी बेवकूफी है कि हम उनको अपना खैर ख्वाह समझते नहीं। उनको पता है कि इंटरनेट जब तक जिंदा रहेगा, जब तक चलता रहेगा, ये कभी भी तन्हा नहीं हो सकेंगे, ये कभी भी तन्हा नहीं हो सकेंगे, कभी भी यकसू नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो इनके जो हकीमुल उम्मत टाइप के लोग होते हैं ना, वो इनको कहते हैं कि तन्हाई ज्यादा इख्तियार करो, यकसुई इख्तियार करो। तो जाहिर सी बात है ये तो फिर शयातीन है ये इंसानों के और जिन्नों के। तो इन्होंने जो है ना वो फिर अपना मुतबादल निजाम बनाया कि जिसके जरिए से दे मेक श्योर कि आप कभी भी तन्हा ना। नहीं, हमारे मशायख कहते फिरते हैं कि जी तन्हाई अख्तियार करो, मुराकबा करो, अल्लाह ताला के साथ लौ लगा के बैठो और तिलावत करो और नेकी के काम करो, राइट। और इन्होंने कहा अच्छा, हम तुम्हारे पास टाइम ही नहीं छोड़ेंगे, तुम ऐसा मसरूफ करके रखेंगे कि तुम किसी भी चीज के काबिल ना रहो। तो यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं, थोड़ी सी ब्रेक के साथ हम अगली क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। وقوم بواجب الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.